نحمد الله نصلي على رسوله الكريم أما بعد الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي البال ومره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم اما بعد شیازم نادر ہی ایسا مسافر ہمیں نظر آئے کہ جو سفر بھی کرتا ہو اور منزل سے بھی خبر ہو. لوگ اس کو دیوانے ہی کہیں گے, منزل کا تو پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے, منزل میری کون سی ہے, اور وہ سفر کر رہا ہے تو کیا حال ہوگا اس کا, کبھی ادھر بھٹکے گا کبھی ادھر بھٹکے گا, منزل تو آئی کوئی نہیں اس کی, پتہ ہی کچھ نہیں میں نے کدھر جانا ہے. تو سب سے پہلے مسافر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی منزل کو تعین کرے, اپنی منزل کو مقرر کرے, اپنی منزل کو پہچانے, تبھی تو سفر شروع کرتا ہے آدمی. جب سفر شروع کرتا ہے تو اس کو منزل کا پتہ ہوتا ہے تو اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, چلتا ہے, دشواریاں برداشت کرتا ہے, صبر بھی کرتا ہے. لیکن ایسا مسافر جو ہوگا جی منزل آپ کی کون سی, کتنی منزل تو کوئی نہیں, کہاں جا رہے ہیں پتہ کچھ نہیں کہاں جا رہے ہیں, تو نہ اس کی کوئی کوشش ہوگی نہ اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہوگا نہ کوئی معیار ہے. تو میرے بھائیو ہم سے بڑا مسافر کون ہو, تو مسافر ہی ہیں اس دنیا کے اندر, تو مسافر ہیں تو کوئی منزل تو ہوگی ہماری یا نہیں, بغیر منزل کے تو کوئی مسافر ہوتا ہی نہیں. آپ کہیں جی ہاں منزل تو ہے میری, بھی کیا منزل ہے آپ کی, کیا مقصود ہے, جنت اچھی بات ہے لیکن ہے نہیں یہ, خیال رکھ محلات اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انعامات دیتے ہیں سب, یہ تو ہماری منزل نہیں ہے, یہ تو اس منزل پہ پہنچنے کا انعام ہے. جو اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے اس کو یہ انعام دیا جاتا ہے, اور جو اس منزل پہ نہیں پہنچتا اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. تو ہم اس کو منزل کیسے سمجھ بیٹھے, غلط ہوئی نا بات, منزل کیا ہے, منزل کے بغیر تو بھائی کام نہیں چلے گا, جب تک ہم اس کو پہچانیں گے نہیں ہماری منزل کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے اس منزل کو تعین کرنے کے لیے بتانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کا تعارف کرایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب جانتے تھے ان کو, بازار میں بھی ہیں, دوستوں میں بھی ہیں, تجارت بھی کر رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, عام حالت بازاروں بھی ہیں, یہی تھا نا گھر. لیکن ایک حیثیت سے ان کے اخلاق کی وجہ سے ساری دنیا مرغوب تھی ان سے, بس اتنی تھا کہ امین ہیں, صادق ہیں, اچھے ہیں, سچے ہیں, ساری دنیا عزت کرتی تھی جو ان کے گرد کے لوگ تھے, اتنے جانتے تھے سارے, اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا, یہی تھا نا. تو اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو تم دیکھ رہے ہو متعارف نہیں ہو تم ان سے, کیا پتا بیچارا, پتہ ہی کچھ نہیں. جیسے ایک بہت بڑے اسٹور میں آپ چلے جائیں, آپ سودا لے رہے ہیں, ریڈی پکڑی ہوئی ہے, اور لوگ لے رہے ہیں یا کیو میں لگے ہوئے ہیں, تو ایک دم آپ کے کان میں آ کے کوئی کہتا ہے اوئے तुम्हें पता है ये आदमी कौन है, और किसी बहुत मारूफ शख्स की बात करता है, बहुत मशहूर आदमी की है, किधर सब देखने लगेंगे उसको, देखेंगे ना, जितनी उसकी शख्सियत होगी तो अपना सौदा भूल जाएगा आदमी, उसकी तरफ देखना शुरू हो जाएगा, और कहीं पता चल जाएगी प्राइम मिनिस्टर आए हुए, ऐसे है ना, सब तो पहले साथ ही चल रहे थे, वो आगे पीछे थे हम सब, जब कहा प्राइम मिनिस्टर है सब मुड़ मुड़ के देखेंगे, अपना सौदा भूल जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर किधर, प्राइम मिनिस्टर कौन सा, दिखाएं दिखाएं, वो सब उस तरफ देखना मुतवज्जा हो जाएंगे। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये चल फिर तो रहा है, लाओ मैं इसका तारुफ तुम्हारे से करा दूं। तो फरमाया है तो मोहम्मद, लेकिन क्या है ये, अल्लाह के रसूल है। जब तारुफ जब कराया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर तो हलचल मच गई, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा इतने बड़े आदमी है तुम, सुभानअल्लाह, धूम मच गई, अल्लाह के रसूल है ये। आगे अल्लाह ताला आयत को मैं बीच बीच से पढ़ रहा हूँ, तसलसल नहीं हुआ लेकिन मतलब समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, मज़मून के अतबार से बात कर रहा हूँ। तो जब ये तारुफ हो गया नबी का, फरमाया रसूलुल्लाह ये है आदमी, तो बहुत बड़े आदमी भाई, कायनात के सबसे बड़े आदमी है अलहमदिल्ला, इसका तो दुनिया इंतजार कर रही थी, हमारे साथ ही फिरते थे चलते थे, आदमी कहता है ये तो भाई वजीर है, मेरे साथ फिरता था चलता था, मुझे याद है कि बहुत पहले मैं उमरा कर रहा था, ख्याल आ गया, तो वाफ करते ढाई बजे का टाइम था, वहाँ तो आए आते हैं ना वी आई पी वगैरह चले जाते हैं, मैं अपने मस्तक था तो छू मचाए कौन कौन अभी सिद्धाम अगस्ता हूँ, तो सब ने अपने मुझे छोड़ दिया, सब उस तरफ देखना शुरू हो गए, अब सब उसको देखता अच्छी ये सिद्धाम ये दुनिया अल्लाह के घर को भी ना, जब कोई तारुफ होना शुरू हो जाए तो उसको भी आदमी नहीं देखता, अच्छा यहाँ पे आ गए, आप उमरा करें पता हाँ मिनिस्टर है तो जरूर आपको भी गर्दन के तो उठी जाएगी या नहीं उठेगी, तो सिर्फ अल्लाह फरमाया मोहम्मद रसूल, तो कायनात पूरी हिल गई हिल गई। लेकिन फिर अल्लाह ने एक और बात कही इसके साथ ही शायद वल्लज़ी नमाओ, तशकीश कर दी कि कुछ तो जल गए भुन गए, पहले मानते थे सब कुछ तस्लीम करते थे आगे पीछे फिरते थे, लेकिन जब सही तारुफ हुआ बस ऐसे दफा ऐसा भी होता है इंसान की शख्सियत को जो वारा जाता है और हकीकत में वो हो, पहले तो कहते हैं जी ये वो, जब पता चलता है ये हकीकत है उसकी तारुफ हो जाए तो फिर उसमें दो कौमें पैदा हो जाती हैं, एक वो मानती भी हैं लेकिन क्या रखती हैं, हसद रखती हैं, हासिद हो जाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन माहू तख़शीश कर दी कि जो तुझे पहचान गए वो कौन थे, माँ जो तेरे साथ थे, साथी थे, तेरे दोस्त बन गए, तेरे पहचान गए, तो जब तेरा तारुफ कराया तो अल्लाह कहता है मैं उनका भी तारुफ कराता हूँ कुरान के अंदर कि वो लोग क्या थे। पता ही चला कि नबी पाक तशरीफ लाए तो उन्होंने वो मंजिल को तायुन फरमाया, मुकर्रर फरमाया, बताया, वो ये बताने तुम आए थे कि तुम्हारी मंजिल क्या है, ये बताना था ना, तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस मंजिल को पाया कौन थे, वल्लज़ीन माहू कुरान कहता है वो जो तेरे साथ थे, उनसे पूछो मंजिल क्या है, सरकार उनको बताया उनकी जिंदगी को देखो क्या क्या थी उनकी जिंदगी, कुरान कहता है तुम्हें मंजिल पता लग जाएगी, कुरान तो पढ़ते हैं ना, फिर मंजिल का हमें पता, हम तो भी कहते जन्नत हो जाए, तो मंजिल के नहीं पता तो हम कितने भटके हुए मुसाफिर हैं, आए सोचें हमारी मंजिल क्या है ताकि मंजिल की तरफ चलना शुरू हो। तो फिर उनका तारुफ करा के अल्लाह ताला कहते हैं इनके बारे में कि क्या है, क्या जब तबून फद्लुल्लाह व रिदवाना, कुरान कहता है ये क्या काम है इनका, सरकारी दोस्तों ने क्या बताया इनको, जो बताया उसमें लगे ना, वो ने पैगाम दिया कि भाई तुम्हारा ये काम है इसलिए है इस तरह से तुम काम है, वो क्या था, कुरान बताते हैं वो क्या करते थे, करते सब कुछ थे लेकिन उसको मंजिल नहीं समझते थे, करते सब कुछ थे लेकिन मंजिल नहीं समझा, मंजिल नहीं समझा उसको, भाई मंजिल क्या था, जब तक फ़ज़्ल मिन अल्लाह है, जिसकी तलाश करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं मुक्तज़राओं के साथ, वो क्या है, फ़ज़्ल मिन अल्लाह व रिदवान, अल्लाह की रजा को तलाश करते हैं, है छोटी सी है, असल मकसद हमारी क्या हुआ, जिंदगी का क्या मकसद है, अल्लाह की जन्नत नहीं है, राजी अल्लाह को करना है, अपने रब को राजी किया, ये मंजिल है हमारी, पता चलेगी मंजिल या नहीं, तब राजी कैसे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है ना, बाजार का कौन सा रास्ता है बताएं, मुझे तो बताओ हम अल्लाह को राजी करने कर क्या रहे हैं। तब तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारा कि हम ये सब अल्लाह के राजी कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जन्नत के जाने के लिए कर रहे हैं, मौत के डर से कर रहे हैं, फला चीज से कर रहे हैं, ये तो एक सेकेंडरी चीजें सारी, असल मकसद को हमें पता ही नहीं था। नमाज क्यों पढ़ते, बस ये आखिरत अच्छी हो जाए, यही कहते हैं ना, फला क्यों कर, अल्हम्दुलिल्लाह बात मैं इसको डिक्लाइन नहीं कर रहा, लेकिन उसके पीछे हमें पता ही नहीं था असल मकसद क्या है, ये सब किसके अंदर छुपी हुई चीजें, ये सब की सब जो छुपी हुई है वो किस चीज में, अल्लाह की रज़ा। देखें अभी आयत छोटी छोटी क्या थी, वह जो पढ़ी थी ना, रद्द मिनल्लाह वरिदवान, कि अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं किस चीज से, आखिर में जो शुरू प्रोग्राम दिया अल्लाह पाक ने वो क्या दिया था कि मुझे राजी करो, और जब वो इंसान इस दुनिया से गुजरता है तो अल्लाह ताला कहता है मैं तुझसे राजी हो जा, राजी हो गया खुद कुछ जन्नत है, अब तू जन्नत में चला जा। तो मकसूद क्या था, अल्लाह को राजी करना था, शुरू हुआ तो बताया राजी करना है, और जब इंसान मरने लगता है जो इस मकसद और मंजिल को पा जाते हैं तो उसका फिर अल्लाह ताला आखिर में कहते हैं भाई तू कामयाब जा रहा है, कामयाबी तेरी क्या है, तो तूने मुझे राजी कर लिया, अब इसका इनाम मैं तुझे क्या दे रहा हूं, फदखुल जन्नत। तो मकसद जो है हमारा क्या है, अल्लाह को राजी करना। राजी कैसे, वाकई मुझे याद आता है सुना, महमूद गजनवी एक बादशाह गुजरे हिंदुस्तान के, बड़े मशहूर बादशाह हैं मुसलमान, तारीख में बड़े वाकयात हैं उनके, बड़ी चीज़ें हैं। तो अच्छा दरबार होता था, बड़े बड़े मुशीर थे उनके, वज़रा थे जैसे उस ज़माने के बादशाहों के होते थे, इंटेलेक्चुअल अक्लमंद लोग बड़े खूब कुछ, उन्हीं वज़रा में उन्हीं लोगों में एक उसका ग़ुलाम था, उस ग़ुलाम का नाम था अय्याज, गुलाम कहते नौकर सर्वेंट था, वो कहाँ वजीर, बड़े बड़े मुशीर, बड़े बड़े मुकाम के आदमी थे सारे उसके दरबार के अंदर, इंटेलेक्चुअल लोग। लेकिन जो अय्याज का मुकाम था वो किसी का नहीं था, जितनी बातें उसकी सुनता था, जितना करीब वो उसको रखता था और जितनी मोहब्बत उससे करता था, तो सारे जो वजीर थे उजरा थे वो चिमगोई करते थे कि यार क्या बात है, हम इतने बड़े आदमी हैं, हम इतने मुसीर हैं, बादशाह हर बात इसकी मानता है, एक गुलाम आदमी है, इसकी क्या, इसकी क्या हैसियत है। बस ये बातें चलती थी तो बादशाह तक ये बात पहुंची, तो उसने सोचा मैं इसका जवाब दूंगा इनको। उसने जवाब तैयार किया, बादशाह तो था ना अपनी हैसियत को, उसने उसका जवाब तैयार किया। उसने एक दरबार लगा लिया, इत्तेफाक से सब लोग मौजूद थे, तो एक बहुत ही कीमती हदिया है ला बादशाह को, किसी बादशाह ने भेजा, वो था कंदील जिसको हम कहते हैं, इसी कंदील लटकी, बहुत ही हसीन और जमील, बादशाह को तोहफा था, कीमती जहरात उसमें जड़े हुए और हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या कुछ उसके अंदर, बेइंतहा खूबसूरत हसीन और कीमती तरीन चीज, अनमोल देखना अनोखी चीज। सारे लोग बैठे थे, बादशाह बैठा था, लाके चीज रख दी, तो बादशाह ने कहा अपने जो सबसे अच्छा वजीर आजम था उसको बड़ा, कहते वजीर आजम साहब इसको तोड़ दो। सोचा क्या कह रहा है बादशाह, बादशाह जान के मान पाऊँ तो बादशाह सलामत अर्ज करूँ, ये तो बहुत कीमती चीज है, आपको हदिया दिया गया है, आप कहते इसको तोड़ दो, मेरा मशा तो आज ना यह है कि आप इसको ना तोड़ें, ठीक नहीं है। बैठे दूसरे को बुलाया जो असिस्टेंट था, वो भी घबराया कि मैं कैसे तोड़ू इतनी कीमती चीज को, उसकी भी जरूरत, उसने ये बादशाह सलाम मेहरबानी फरमाया इसको रहने दें, ये तो हदिया है, बहुत कीमती चीज है, नायाब चीज है, उसे छोड़ दे। चुनाचे सारे आस्ता आस्ता उसने जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबको बुलाया, सब ने यही जवाब दिया। आखिर उसने अय्यास को बुलाया, उसने कहा तोड़ दो, उसने डंडा उठाया और उस पर मारा, रिजा रिजा कर दिया, छोड़ा ही नहीं उसका, ऐसे ही कोई नहीं छोड़ा, पार कर दिया, जुड़ गया। तो बादशाह इधर आओ, बदतमीज तूने इतनी कीमती चीज मेरी तोड़ दी, हैं तुझे शर्म नहीं आई इस तोड़ते हुए, देखा नहीं सारे उजरा बैठे थे, कितने अच्छे लोग थे, कितने बड़े बड़े लोग थे, तू उनको बेवकूफ समझता है, सब पागल थे, और तुमने उठा किसी को तोड़ दिया, ये कब अब कहां से आएगी इतनी कीमती चीज, कैसे मिलेगी मुझे? जरा गर्म हुआ उस पर, उसने हाथ बंद करके के बाद सलाम माफी चाहता हूं। लेकिन बात ये थी दरअसल जो मेरे दिल में बात है, जो आपने कहा किसको तोड़ दे, तो मेरे नजदीक आपका हुक्म बहुत कीमती था बनिस्बत इस चीज के, आपके हुक्म के मुकाबले में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी मेरे नजदीक, अभी भी नहीं है। तो मैं ये नहीं कर सका कि आपके हुक्म के मुकाबले में मैं इसको तोड़ देता, इसको रहने देता, आपके हुक्म को तोड़ देता, आपके हुक्म को मैं नहीं तोड़ सकता। दरबार वाले चुप हो गए, तो पता ही चला दोस्तों कि हकीकत बंदगी जो है वो ये है कि बंदा वो है कि जो अपने रब का हुक्म ना तोड़े, हकीकत है ये बंदगी यही है। रजा का मुकाम यही मिलता है कि जब कोई हुक्म आ रहा हो उसकी आका की तरफ से, तो उस वक्त ये नहीं सोचना कि इस हुक्म के नुकसान मुझे कोई क्या होगा, कितना मुझे जाएगा, कितना खत्म होगा, क्यों क्या कब नहीं होता, बल्कि देखिए कि हुक्म किसका आ रहा है। जो उस हुक्म को कबूल कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस हुक्म पे अमल कर लेता है जो उसकी रब की तरफ से है, तो अल्लाह के नजदीक वो ऐसा हो जाता है कि अल्लाह कहता है मैं इससे राजी हो गया। तो सबसे बड़ी इबादत यह है कि अल्लाह का जो हुक्म भी हमें पहुंचे, जिस तरह भी पहुंचे, है अल्लाह का हुक्म। पता यह है कि अल्लाह का हुक्म अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, कब पढ़ो, किस तरह पढ़ो, कहा हुक्म क्या है नमाज पढ़ो, अंधाधुन नमाज की तरफ आ जाओ। अल्लाह ने कहा रोजे रखो, हमें ही नहीं पता कि 24 घंटे का रोजा आता है, 20 घंटे का रोजा आता है, 30 घंटे का रोजा आता है, हमें हुक्म है, हमने बस ये क्यों रख रहे हैं आप, फला है ये कुछ पता नहीं, अल्लाह का हुक्म आया है, हम इसको नहीं तोड़ सकते। इसके मुकाबले में जितनी चीजें हम तोड़ सकते हैं, लेकिन इस हुक्म को नहीं तोड़ेंगे। हज का हुक्म आ जाता है अल्लाह की तरफ से, कुछ भी हो, किसी हालत में हो, लेकिन उस सारी कंडीशन में है जो हज कर सकता है इंसान, शरीर सारे उस पास मौजूद है, वो चीज है हुक्म बजाना है। अब उसके मुकाबले हम जो कुछ भी ढकोसले करते रहे, कितने जो कुछ हम करना चाहें कर लें, लेकिन वो जो हुक्म अल्लाह का उस वक्त मौजूद है, उस हुक्म के मुकाबले में कोई हुक्म नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म है हमने हज करना है, ज़कात दो अल्लाह ने कहा, किसका हुक्म है अल्लाह का। तो अभी नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, हाँ अल्लाह का हुक्म है, रोजे भी हम रखे हैं अल्लाह का हुक्म है, ज़कात देना मुश्किल है, क्या करें, निकाल देंगे, फला कर देंगे। ये जो दीन है कि कुछ कर लिया कुछ छोड़ दिया, कुछ मान लिया और कुछ ना माना, कुछ पे कायम हो गए और कुछ को बिल्कुल छोड़ दिया, अल्लाह के नजदीक ये दीन नहीं है। ये तो अल्लाह ने पूरे कुरान में ये वाकया दिए कि ऐसा दीन ना बना लेना, पुरानी कौमों के अल्लाह ने यही वाकया में बयान किया है, बड़ा पढ़ा है कुरान, पूरे कुरान में नसीहत अल्लाह ने जो दी है, पूरे कुरान में जो वाकया से हर चीज से नसीहत हमें दी है, जो हमें समझा है, वो एक ही चीज पे अल्लाह के हुक्म को मत छोड़ना। आप देखें कोई वाकया उठाकर देखें, बताता अल्लाह यही है, इसे ख्याल रखना एक चीज को कि हुक्म आएंगे मेरे, वो कभी आजमाइश बनेंगे आपके लिए, कभी मुश्किलात में आएंगे, कभी किसी हालत में आएंगे, लेकिन कामयाब वही शख्स होगा जिसने अपने अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लिया, जिसको अल्लाह ने मना कर दिया इसके नजदीक ना जाना। अब कितना ही हमें इस पर नुकसान होता नजर आए, कुछ भी हो, ये हम नहीं कर सकते, कितना ही फायदा हमें नजर आ रहा है। अल्लाह ने हुक्म किया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ने हुक्म दिया रोजा रखो, हम रोजा रखेंगे, अल्लाह ने हुक्म दिया हज करो, हम हज करेंगे, अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात दो, हम ज़कात देंगे, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे हबीब की पैरवी करो, हम पैरवी करेंगे, नकल करो, हम उनकी नकल करेंगे। ये अल्लाह के हुक्म है ना सारे चलते, अल्लाह ने क्या है इस चीज को मैं नहीं पसंद करता, ये मत करना, फराव नहीं कर दूंगा उस चीज की, इर्द गिर्द तुम होते देखोगे वो चीजें, तुमने नहीं करना। ये मिसालें दुनिया कर रही है, हम क्या करें, सब कर रहे हैं, कहता ये मिसाल नहीं, मिसाल ये कि मैं जिस चीज को कह रहा हूं तुम्हारे समझ में आए या ना आए, दिमाग पे ना तोड़ने लगना कि जी इसमें ये हिकमत है, इसमें ये हिकमत है, कोई तुम सोच नहीं सकते मेरी, बहुत सी चीजें मैं वो तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी अकल के नजदीक भी नहीं जाएगी, है ना, ये हज किया है सारा, 30 लाख का 30 लाख आदमी जाके जमा हो जाते हैं, क्यों जमा हो गए, चक्कर काटना शुरू हो जाते तवाफ पे, क्यों, क्या इसका क्या हो गया है, मतलब क्या इसका, कुछ सेंस नजर आता है, अकल अकल आया, अच्छा फिर क्या है भाई, यहां तो 1 लाख का सवाब है नमाज का, हुक्म नहीं छोड़ दो, अब सब छोड़ के एक मैदान में चले गए, मीना के मैदान में पहुंच गए, ये क्या हुआ, 1 लाख का सवाब छोड़ के मीना में नमाज पढ़ो, अब जो मीना में नमाज नहीं पढ़ेगा वहां जाएगा, वो एक बहुत अफजल नमाज को तरक कर देगा, लोग करते ना वहां, नहीं यार बाकी नमाजें वहां पढ़े, वो अल्लाह के हुक्म को अधूरी कर रहे हैं, पूरा हज आप देखें सेंस में आता ही नहीं, अकल में आता ही नहीं, और कुछ नहीं किया पत्थरों को, अब बड़े शौक बड़े मजे से कह रहे हैं, अल्लाह को हमने पत्थर मारे और जनाब 7 पत्थर मारे हैं, और सबसे बड़ी चीज हमें वही नजर आती है, वो क्या उसके पीछे, अल्लाह का सेंस तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी, फिर अरफात में आ जाओ, फिर मीना में चले जाओ, फिर तवाफ करने आ जाओ, कभी सर मुंडा दो, कभी कब्र उतार दो, खबरदार ये कुछ सेंस नजर नहीं आता, बड़ी बड़ी चीजों को अल्लाह ने छुड़ा दिया, यानी हरम को छुड़ा देता है, खाना काबों को छुड़ा देता है अल्लाह ताला, और जंगल में भेज देता है, जंगल फिर दूसरे का भेज देता है, फिर कहते नहीं पत्थर मारना शुरू कर दो, ऐसे पत्थर चुन लो, फिर क्या सफा मरफा, वो क्या कुछ समझ, अकल कुछ बताती नहीं, तो अल्लाह ताला ने सब चीज इससे सारी तालीम ये देनी थी, हिदायत देनी थी कि ये यही है इंसान की जिंदगी, कि तुमने ये नहीं देखना कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, और ना टटोलना ना उसमें कोशिश करना, आजादी तौर पर भी इस चीज को पसंद नहीं करता, मिसाल दो ये गलत नहीं कह रहा कि जी रोजा है इससे बड़ा सेहत में ये होता है, उससे बड़ा ये फायदे हो जाते हैं, रोजे से आदमी को ये बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ये फलां होती हैं, ताज्जुब की बात है कि अल्लाह का हुक्म हो उसमें फायदा ना हो, फायदे क्या गिन रहे हो, ये क्या हमें क्या मोटिवेट कर रहे हो, हमें क्या समझा रहे इस बात में, जी भाई तो बड़ा फायदे की चीज है, आदमी सुबह छोड़ता है तो उसमें अब आएंगे देखो बड़े बड़े उसमें उसके फायदे लिखे होंगे रोजे के, रोजे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह के हुक्म की तामीर की जा रही है, मेरे रब ने काम कर हमें कुछ पता नहीं, हम पता नहीं क्या रोजा, हमें आप डोंट नो अबाउट एनीथिंग, हमें नहीं पता, अकेले तो हमारे तभी हैसियत के हिसाब से तो हमें चुभ रहा है, इसमें किसको मजा आता है कि अभी खाना पीना छोड़ दे और हर चीज को छोड़ के बैठ जाए, और ये तो आप शो में मार ले आदमी जी बड़ा है, लेकिन तभी जो हैसियत, और रोजे का सवाब भी इसी में है कि वो तबी हैसियत के खिलाफ है, कोई नहीं जी बड़ा मजा आ रहा है, ये तो सब ये चक्कर वाले, वो भी मुकाम बहुत बुलंद है, मजे वाले मुकाम तो जब आता है जब अल्लाह राजी हो जाए, जब अल्लाह के हुक्म पे इंसान राजी हो तो फिर ये मजे देते हैं अल्लाह पर, जिसको फजल कहे, जब तक न फजल मिल्ला है, पहले कहना फजल अल्लाह का जो है वो फिर फजल बनता है कि जब इंसान वो राजी हो जाए, जब अल्लाह ऐलान कर देता है कि मैं इससे राजी हूं, पूरा देख लिया सहाबा कराम को अल्लाह पाक ने सबसे बड़ा एजाज ये दिया, सबसे बड़ा एजाज की जमीन पर नबी पाक मौका फरमाया कि तुमने करना है तो सारी जिंदगी यही काम करते रहे कि हमने अल्लाह को राजी करना है, और किसी हुक्म को भी उन्होंने टाला नहीं, तभी तो सहाबी बने, तभी तो मुकाम पे पहुंचे, अल्लाह ताला ने एजाज जो दिया है वो सबसे बड़ा कायनात का एजाज दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि मैं इनसे राजी हूं, कुछ नहीं कहा कि मैंने जन्नत दे दी, नहीं, सबसे बड़ा एजाज दिया, ये वो कौम है जिसके बाद कौम कभी नहीं आएगी, मैं इससे राजी हूं, किसी इबादत से नहीं कहा, कुछ नहीं, बस एक चीज थी कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना था, खबरदार इस चीज को ना सोचो कि इसमें फायदा नजर आएंगे तो हम करेंगे, ये चीज ही ये छोड़ दें, इसमें बड़ी बुरी चीज है, ये निजस चीज है, फला चीज है, ये फजूल बात है, ये फजूल बात है, तब कोई कह जी बहस करते हैं अक्सर लोग कि बताने के लिए ऐसा है, इसका जवाब एक ही देना चाहिए कि क्यों छोड़ो, इसमें ये कि छोड़ इसलिए रहे हमने, मेरे रब का हुक्म है हमने छोड़ दिया, फायदे होंगे तो हो हमें क्या पता, नुकसान हो हमें क्या नुकसान है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने हबीब की शिकल बनाओ, अपने हबीब की सूरत बनाओ, अपनी की नकल करो, अब जो नहीं कर रहे वो अल्लाह के हुक्म को नहीं पढ़ रहे, बेशक वो तहज्जुद पढ़ रहे हैं, उम्र टिका रहे हैं, कुरान खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक कानून को अल्लाह के तोड़ रहे हैं, हुक्म को तोड़ रहे हैं, अल्लाह के एक हुक्म को तोड़ना तो ये क्यामत है, बहुत बड़ी क्यामत है, ये तो उस वक्त पता चलेगा दोस्तों जिस वक्त आखिरत आएगी, वो कब्र आएगी, हमें स्टैंडर्ड जो दिया गया है, हमारी जो मंजिल है, जहां हमने पहुंचना है, जो हमने अचीव करनी है, बिफोर डेथ, अल्लाह माफ करे कि इस हालत में हमारी अगर मौत आ गई कि हम अल्लाह के कानून अल्लाह के हुक्म को हम तोड़ने वाले हैं और हमारी मौत आ गई, तो फिर जो तोड़ने वालों की हैसियत है वो दूसरी तरफ है, कुरान बताते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं है, वो तो अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह की जो اللہ آپ کو عذاب مقرر کیے ہیں جہنم کی طرف انسان کو دھکیل دے. جی ایک تو ہم کر رہے ہیں نا, پانچ ہم کریں کہ نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, دنیا یہ سب رہ جائے گی, منزل ایک ہے ہماری. الحمدللہ کامیاب وہ لوگ ہیں, اللہ نے بتا دیا اسی کا حال نہ جو پہنچ گیا اور اس حال میں پہنچے کہ اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا. پورے جو قانون اللہ کا, جس کو حرام کا ہے وہ حرام ہے, جس کو چھوڑنا کا اس کو چھوڑو, جس کو کرنا کا ہے اس کو کرو. اور عقل کی دلیل نہیں چلتی اللہ کے قانون کے آگے. تو میرے بھائی اس منزل کو پہنچنے کے لیے کتنی مشکلات ہیں, کچھ بھی ہو ایک ہی مشکل آتی ہے, اس پردے کو گرہیں کچھ بھی نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ نفس ہے, نفس ہے. بس وہ آپ کو روکتا نہیں, ابھی نہیں, نہیں نہیں یار یہ ہو جائے, نہیں خبردار کچھ نہیں, اللہ کا حکم ہے, اللہ نے یہ فرمایا ہے. ہمیں کسی علماء کراؤں, عالم سے, علماء سے, مفتیان سے, یہی تو بتانے کے لیے ہے. علم کا فائدہ تو جبھی ہے نا, عالم مفتیان یہ ڈاکٹر ہے نا, یہ ڈاکٹر ہے نا کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اس کے علاوہ جو باتیں سب فضول ہیں, سب اسی لیے مقرر فرمایا ہے. جو علم حاصل آدمی کرتا ہے, علم حاصل کرنے کا مطلب ہی صرف یہ ہے کہ وہ رہنمائی کریں لوگوں کی, اور اس سے مطلب کچھ نہیں ہے. یہ باقی سب جو معاملے ہیں یہ سب اپنے بنائے ہوئے لوگوں کے, اسی عالم کی عزت ہے زمانے کے اندر. وہی جو ہے وارث رسول ہے, کہ جو امت جس طرح نبی پاس میں تعارف کرائے اللہ پاک نے ان کا, اور پھر بتائے گی رسول نے یہ ہیں جو تمہیں راستہ بتائیں گے. ان کے جو وارثین ہیں وہ کون ہوں گے؟ علماء کرام ہوں گے, علماء حق ہوں گے. ان کا کام صرف ایک ہوگا کہ وہ صرف راستہ بتائیں گے. اور یہ دیکھیں علماء حق میں کیسے لوگ گزرے. ابو حنیفہ لاکھوں کے حساب سے انہوں نے الحمدللہ مسائل نکالے ہیں اور ہم امت کو پیش کیے ہیں کہ تم اس طرح چلو. حالانکہ زندگی اتنی تھی ان کی, لیکن اللہ کا کوئی کام کرنا شروع کرے انسان تو اللہ پاک اس کی زندگی میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ الحمدللہ 3,000 کتابیں لکھی ہیں. تھانوی کی دیکھ لیں کتنی کتابیں لکھی, رحمت اللہ علیہ. ان کی زندگی بھی اتنی تھی, کھاتے بھی تھے, بیوی بھی تھیں, ماشاء اللہ استھان کی دو بیویاں تھیں, گھر بھی تھا, بار بھی تھا, اور اپنی عبادات بھی تھیں, تسکیہ بھی تھا, عبادات بھی تھی, سب کچھ تھا. اور یہ تھا امت کی طرف جو ان سونپ گئے تھا چیز. حال یہ تھا کہ جس وقت وہ آخری مرض پر تھے, شفیع رحمت اللہ یہ بتاتے ہیں, واقعہ کہتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب کے جس تو آخری وقت میں تھے تو انہوں نے اپنا کام کو سپرد کیا تھا مفتی شفیع صاحب کو. وہ تفسیر لکھ رہے تھے کہ کوئی مسائل کی کتاب تھی, اس وقت مجھے ذہن پورے بات نہیں آ رہی. تو فرمایا کہ ان کی یہ حالت تھی, یہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی آپ سے نہ ملے, بالکل بند کر دیا تھا حکمہ نے. وہ بستر پہ اکیلے تھے, بالکل تنہا رہتے تھے. تو پھر کہتے ہیں مجھے کبھی آواز مارتے تھے اور بالکل منع کیا تھا, اور یہاں تک کہا تھا کہ ذہن میں کوئی چیز بھی آپ کے نہ آئے, مکمل ریسٹ آپ کو چاہیے. یہ آخری وقت کی بات بتا رہا ہوں امت کی. تو کہنے مجھے آواز ماری انہوں نے, میں شفیع ابھی ایک آیت میرے ذہن میں آئی ہے, تو یہ بڑی مفید آیت ہے فلاں فلاں مسئلے پر, امت کو اس سے بہت فائدہ ہوگی, بالکل یہ مسئلہ نکل آئے گا اس میں, تم اس مسئلے کو اس طرح درج کر دو. میں نے کہا حضرت ابھی بھی آپ کا دماغ چل رہا ہے, اسی طرف چل رہا ہے. کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے محمد شفیع, کہ جب تک اللہ نے مجھے ہوش دیا اور ہوش میں رکھا ہے, اور جب تک ہوش میں رہوں گا تو میری پوری کوشش یہی ہوگی کہ میں سرکار کی امت کو پورا پیغام پہنچاتا چلا جاؤں, اس سے فائدہ ہو. میرے علم کا کیا فائدہ لوگ, میں کیا خط میں جواب دوں گا تجھے, میں نے عالم بنایا تھا, تو نے میری امت کے لیے تو نے کیا کام کیا. معذرت سے چاہتا ہوں, آج کیا حال ہے, کیا آج امت اتنی پیاسی ہے کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پیشاب کیسے کرے, یہ بھی نہیں پتا کہ کلمہ کیسے پڑھے. میں آپ کو صحیح بتا دوں, یہی دکھا دیتا ہوں, میں ایسی عورتیں دکھا دیتا ہوں, ایسے لوگ دکھا دیتا ہوں جن کو یہی نہیں پتا کہ وضو کیسے کریں. فرائض جو ہیں ہمارے, ہمیں وہی نہیں کرنا, ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نماز جنازہ کیسے پڑھائیں. لوگوں کو سمجھا کہ تم آؤ, میں تمہیں یہ چیزیں بتاتا ہوں. خدا کی قسم ایسا عالم کوئی ہوگا وہ صحیح نائب رسول ہوگا, اور اس کے اندر جو برکتیں, جو نور, جس کا نام نکلے گا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں منزل کا ہی نہیں پتا آج تک, ذہن میں ہوگا لیکن کبھی اس پہ کنسیڈر نہیں کیا کہ ہم اس منزل تک پہنچنا ہے. اور اللہ کی کسی حکم کی ایک حکم کو چھوڑنا, شیطان نے کتنے حکم چھوڑے تھے مجھے بتائیں, کتنے حکم چھوڑے تھے, کتنا بڑا آدمی تھا وہ بتائیں, کتنا مقرب تھا, کسی فیلڈ کے اندر بھی کم نہیں تھا, کسی فیلڈ میں بھی کم نہیں تھا, مقرب تھا. کوئی زمین کا چپا نہیں چھوڑتا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا, کوئی چھوڑا, سب جانتے تھے اس کو, جن بھی جانتے تھے سب کی بڑی جان چیز ہے. تو اس نے فقر کے اندر آ کر کہ میں تو بہت کچھ ہوں, میں تو یہ کرتا ہوں, میں تو اتنا کچھ کرتا ہوں, ایک چھوٹی سی چیز تو کر لیتے ہیں, ہم یہ کر لیتے ہیں نا, کیونکہ بہت چیز نظر آ رہی ہیں. ہائے ہائے, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو اس کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے اس کی نعمتوں پر, کہ اللہ تو نے مجھے تہجد دی ہے, تو نے مجھے اشراق دی ہے, تو نے مجھے ذکر دیا ہے, تو نے مجھے سنتوں پہ چلنے کی توفیق دی ہے, لاکھوں آدمی جو نہیں کر رہے سب نے مجھے سب توفیقیں دی ہیں, تو اب یہ میں گناہ کروں کبھی نہیں کروں, ہو ہی نہیں سکتا. ہونا تو یہ چاہیے اس کی نعمتوں پر اللہ کا شکر اس طرح کرے, اور ہم کیا کرتے ہیں سب کچھ دیکھنے میں چھوٹی چیزیں, چلو یار بچے کر رہے ہیں ان کو خوش کر دیتے ہیں, تھوڑے قانون گھر کے اندر ٹوٹ رہے ہیں, شریعتیں ٹوٹ رہی ہیں, بس نہیں ہم تو بڑے ذکر کرنے والے لوگ ہیں جی, ہم تو تسبیح کھڑکانے والے, ہم تو یہ کرنے, یہ سب دھوکے ہیں, سب دھوکے ہیں. جو قرآن بتا رہا ہے اس کو غور سے سن لو, ایک ہی چیز پہ کامیابی ہے, اور وہ کامیابی اللہ کے حکم کو ماننا, اور سب سے بڑی ناکامی ہے اللہ کے کسی حکم کو بھی چھوڑ دینا. شیطان نے ایک حکم چھوڑا تھا, ایک, تو سیدھا اس نے نام بھی تو نہیں کی, اس نے جواز دیا تھا, جواز دیا تھا, نہ کرنے ضرورت نہیں تھی اس میں, جواز دیا کہ فلاں سے بناؤ, یہ فلاں سے بنایا, تو جانا ختم. اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے, ہمیں خوف رکھنا چاہیے دوستوں, کس پہ ہم چڑھے ہوئے پھرتے ہیں, ایک جھٹکا لگتا ہے پتہ نہیں چلتا کہاں گیا, آج ہمارے ساتھ ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا, آج پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن, چوتھا دن, دنیا بھولتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک یہ چیز رکھی انسان کے ساتھ, یہ اللہ کی فضل ہے کہ وہ جو غم پہلے دن ہوتا ہے اس غم کو اللہ, اگر ہمیشہ وہ غم رہتا ہے انسان زندہ نہیں رہ سکتا, کبھی نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ بتدریج اس کو ختم کرتا رہتا ہے, بتدریج ختم کرتا ہے, پھر ہم اس کو بھولتے چلے جاتے ہیں, بچارے مٹی کا ڈھیر بن گیا, پتہ نہیں کہاں گیا, کہاں نہیں گیا, کس حساب میں ہوا, کدھر گیا, پھر ہم اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں, لیکن پھر ہمارے ساتھ بتدریج ہونا, یہ تو عبرت ہے ہمارے لیے. آج کے بعد صحیح تہیا کرو کہ اللہ پاک نے جو حکم دیا, نماز ماننا ہے نا, روزہ ماننا ہے نا, حج ماننا ہے نا, زکات ماننی ہے نا, اطاعت رسول ماننی ہے نہیں ماننی, ہاں یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے لیے اس کے بعد کوئی کام نہیں بنے گا, اطاعت رسول مسٹ, سب چیزوں کو ماننا ہے. اگر ہم نے اس میں سے کسی چیز کو چھوڑتے ہیں اللہ معاف فرمائے, پھر ہمارا گزارا کوئی نہیں آخرت کے اندر. واخر تعالیٰ رب العالمین.